ओम शांति। दिलाराम बाबा के दिल वाले बच्चों को दिल का आराम देने वाले डबल डॉक्टर आदरणीय सतीश गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली बजाकर आपका इस पट्टे में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका परिचय भी बहुत लंबा है, दूंगी तो आप भी कहेंगे बस। इतना है कि आप जी बिल्कुल आपकी सेवाएं भी लेते हैं। आपके लिए इतना ही कहेंगे कि स्टेथोस्कोप से सुनते हैं धड़कनों की पुकार, राजयोग से जगाते आत्मा का सत्कार, हृदय में लिए करुणा का सार, तन और मन दोनों का रखते आप ध्यान, बांटते हैं आप शुभकामना शांति और प्यार। तो आज हमें खुश रहने की जो विधि है उस पे प्रकाश डालेंगे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। चलिए हम इस पे शुरू करें। इससे पहले सदा खुश कैसे रहें या सदा खुश रहने की विधि, इस विषय पे आपसे रूह रिहान करने से पहले चलते हैं एक बार उस विश्वनियंता के पास। इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट लीजिए। मैं शरीरी आत्मा परम धाम घर में उस पावर हाउस अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाए उस पावर हाउस। ओम शांति। हम सभी सदा खुश रहना चाहते हैं, चाहते हैं सभी। आप में से कोई कभी दुखी होना चाहता है? चाहते हैं हाथ उठाओ। जो सदा खुश रहते हैं हाथ उठाओ। सदा खुश, कुछ भी हो जाए, कोई मर भी जाए, नुकसान भी हो जाए, ऐसा है में से कोई जो सदा खुश रहता हो, एकदम सदा खुश? हाथ उठाओ। नहीं, कोई आपके इंसल्ट भी कर दे आपको, नहीं रह सकते? खुशी की परिभाषा क्या है? हंसी और खुशी है ना, कहते हैं हंसी मतलब लाफ्टर, समझते हैं लाफ्टर, लाफ्ट हंसना और खुश रहना। हंसना क्या ठीक है? क्या आपने रामायण सीरियल देखा था? रामायण में हंसता कौन रहा? सारे और मुस्कुराता कौन रहा? तो हंसना तो क्या है? बाबा ने मुरली में कहा हंसना तो विकार है, आवाज से हंसना तो एक विकार है। तो आवाज से हंसना भी नहीं चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, खुशी चाहिए नहीं? और सिर्फ जितने सारे प्राणी हैं, पता है आपको कितने सारे प्राणी? 28 लाख तरह के प्राणी हैं धरती पर। कितने तरह के प्राणी? 28 लाख तरह के प्राणी हैं। 28 लाख तरह के थलचर, थलचर ना जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं। 28 लाख तरह के पक्षी हैं आसमान में उड़ने वाले, और 28 लाख तरह के जल में रहने वाले प्राणी, मतलब जो मछलियां वगैरह अलग अलग तरह की चीज होते हैं, बहुत सारी 28 लाख तरह की वेराइटीज हैं। 84 लाख होते टोटल ना। तो जलचर, थलचर और नवचर है ना, तीन तरह के ना। इसमें से किसी को कोई मुस्कुरा नहीं सकता है, एक मनुष्य को छोड़ के। शेर जंगल का राजा मुस्कुरा सकता है? बंदर मुस्कुरा सकता है? हाथी मुस्कुरा सकता है? कोई भी नहीं मुस्कुरा सकता, सिर्फ हम मुस्कुरा सकते हैं, मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। तो मनुष्य की विशेषता ही मुस्कुराना है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, कैसे मिलते हैं? दुखी हो तो भी क्या होता है, एक बार तो मुस्कुराते ही ना, नहीं मिलते तो एक बार तो मुस्कुरा में रहते। हमारी पहचान ही क्या है? जब फोटो खिंचवाते हो तो क्या करते हो? कभी ना मुस्कुराए हो कि तू फोटो खिंचवाने के समय? फोटोग्राफर भी क्या बोलता है, चेयर अप ना, नहीं स्माइल प्लीज बोलता ना। तो फोटो खिंचवाने में तो सब भी मुस्कुरा लेते हैं, पर खुशी जो है वो इसकी परिभाषा क्या है? क्या खुशी बाहर की बात है या अंदर की बात है? खुशी बाहर की बात नहीं है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा इंटरनेशनल डेफिनेशन है खुशी की, वो क्या है? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड इन विच, मतलब खुशी जो अंदर की बात है, कब होती है? जब आप अंदर से संतुष्ट होते हो। राधा माइंड की बात में नहीं कहेंगे, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग, अंदर की आत्मा की अंदर की बात है। जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं तो खुशी आती है, राइट? जो असली खुशी है कब मिलती है हमको? कब मिलती है? जब अंदर से संतुष्ट होते हैं। क्या दुनिया में कोई खुश है? अमीर से अमीर व्यक्ति खुश है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति खुश है? सबसे बड़ा पॉलिटिशियन खुश है? अमेरिका का प्रेसिडेंट खुश है? रशिया का प्रेसिडेंट खुश है? मुकेश अंबानी खुश है? अडानी खुश है? कोई भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? कलेक्टर खुश होता है? ना अनपढ़ खुश होता, ना पढ़ा लिखा, कोई भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? बिकॉज कोई भी संतुष्ट नहीं है, जो उनको मिला उससे संतुष्ट नहीं है, और इच्छा है पाने की, है ना? नहीं, अगर इच्छा है तो हम खुश नहीं हो सकते। कुछ भी इच्छा है पाने की तो हम खुशी नहीं रह सकते। अगर हम इच्छा मात्र में अविद्या है तो हम खुश रह सकते, राइट? तो दुनिया में ऐसा कोई है जो इच्छा मात्र में अविद्या हो? आपकी कोई इच्छा है क्या? हमें बाबा मिल गया, अब क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? तो फिर खुश क्यों नहीं हो? हाथ तो उठाया नहीं आपने, क्या उठाया था? किसी ने भी नहीं उठाया, अपने मन मन में उठाया होगा ना, पूरी क्लास में किसी ने उठाया? तो खुशी जो है, जिसे पता है ना, संतुष्टता, संतुष्टता कौन सी वाली? स्वयं से भी संतुष्ट हो, जो भी मुझे मिला है, कहते संतुष्टता माना समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं। जो भी मिलता है वो कैसे मिलता है? समय पर मिलता है और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। कंपटीशन कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति से हम कंपैरिजन कर सकते हैं? हम कहें कि उसके भाई इतना है, मैं भी MBBS, मैं भी MD हूं, उसके वो भी MD है, मैं भी हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, वो भी हार्ट, उसके पास तो 50-100 करोड़ है, मेरे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। तो कंपैरिजन है क्या? खुशी कोई चीज से नहीं है ना, कि बाहरी चीजों से नहीं है ना। जो कहते ना अलग, जो मिलने के होते, लेने की खुशी, देने की खुशी, मतलब लेने में खुशी, देने में खुशी है? लेने में खुशी नहीं होती। कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे तो खुशी नहीं होगी आपको? नहीं, क्यों? खुशी तो होगी ना। 1 करोड़ आपको मिले, खुशी नहीं होगी? नहीं, खुशी तो होगी ना। लेने खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, और देने खुशी क्या होती है? लिया आपने, फिर क्या होगा? 1 करोड़ रुपए ले तो लिया, फिर उसको क्या करेंगे आप? किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए लाके, कैश लाके दे दिया, फिर क्या होगा? रात में आपने लाके दिया, आप कमरे में रख के सो रहे हैं, तो क्या होगा? पहले बहुत अच्छी नींद आ रही थी, अभी क्या होगा? नींद नहीं आएगी। किसी को पता भी नहीं आपके एक पास 1 करोड़ रुपया है, पड़ोसियों को भी नहीं पता है, चोरों को भी नहीं पता है ना, पर आपको लगे कोई इसको लेना चाहे, कोई लेना चाहे लेना चाहे, फिर अगले दिन कहाँ छुपाएं, कहाँ रखें, कहाँ करें, है ना, है ना, क्योंकि बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक में जमा नहीं करा सकते, है ना, कहाँ भी रखेंगे तो प्लॉट लेंगे रजिस्ट्री कराएंगे तो भी गवर्नमेंट को पता लग जाएगा नहीं कहाँ से आया पैसा। तो 1 करोड़ भी क्या हो जाएगा, खुशी तो मिली कितने देर के लिए, फिर 1 करोड़ संभालने की प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं चिंता अलग डर अलग लगेगा, नहीं नहीं होगा। तो जितनी भी खुशी मिलती है ना कोई चीज, नाम मान शान मिलने से, कोई भी चीज मिलने से ना, नाम मान शान मिले, पैसा मिले, कुछ भी मिले, उसकी खुशी अल्पकाल की खुशी होती है। और पापा क्या कहता है, वैसे सन्यासी लोग क्या कहते हैं, अल्पकाल का सुख कैसा होता है, कागविष्ठ समान, कौवा होता है ना, कौवा, कौवे की जो उल्टी जो होती है ना, आपने कभी देखी, देखी नहीं, मैंने देखी, मैंने इंटर्नशिप करा था, मैं MBBS दिल्ली से किया ना, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से किया, तो वहां पर हम लोग संडे को छुट्टी, हमारे पीछे ही ना राजघाट था जहां हम रहते थे ना, राजघाट जानते ना, महात्मा गांधी की बापू की समाधि, तो हमारे कॉलेज के थोड़ा दूर जाके पीछे की तरफ राजघाट था। तो अब संडे को कभी कभी हम लोग कैसे सुबह सुबह तैयार होकर, छुट्टी होती थी तो हम लोग चले जाते थे राजघाट, वहाँ थोड़ा सैर करते थे, थोड़ा बैठते थे। तो एक दिन मैं थोड़ा देर हो गई जाने में, तो 7 बज गए थे, तो फिर मैं एक वहाँ से जैसे ना वहाँ दरियागंज बीच में पड़ता है ना, दरियागंज में एक जगह है जहाँ पर जो मारवाड़ी लोग हैं ना दरियागंज में रहते हैं, वो पक्षियों को दाना डालते हैं, तो पक्षियों को डालते हैं सुबह सुबह बाजरा या कुछ और दाने डालते हैं, चावल कुछ भी चीज डालते हैं, तो देखा वो डालते हैं रोज आगे, तो वहाँ पर पक्षी बहुत सारे, धूप निकली थी हल्की हल्की, और उसमें वो मैंने पहली बार देखा, ध्यान गया तो वहाँ पे लगा कुछ सारे मोती जैसे ना, कुछ मोती दानों के बीच में कुछ मोती पड़े हुए चमक रहे थे। तो मैंने कहा ये मोती कहाँ से आ गए, दाने तो ठीक है पर मोती कहाँ से आए, तो चमक रहे थे बहुत लाइट में, तो मैंने देखा। फिर एक कौवा बैठा था, कौवा आया उसके मुंह से एक मुख उसने निकला जो अंदर से वो भी चमकना शुरू हो गया, तो मेरे कौवे के मुंह से मोती निकल रहे हैं, क्या बात है। तो फिर मेरे को इच्छा हुई कि ये क्या चीज है, तो चमक रहे थे बहुत, तो मेरे हाथ में मतलब मैंने कहा कौन सी उंगली से छू के देखूं, तो मैंने कहा ये तो राइट हैंड में नहीं छू रहा, मेरी उंगली में कौन से छू, मेरी छोटी उंगली नहीं, मेरी छोटी उंगली से मैंने छू के देखा, वो थी तो उल्टी उसकी, और टच किया वो तो उल्टी थी, चमक तो ऐसे रही थी, और जैसे ही मैंने देखा तो बदबू थी उसके अंदर बहुत, यहाँ दूर से मेरे को बहुत बदबू आ रही थी, तो मैं वापस गया हॉस्टल में, वापस हाथ धोए तो भी बदबू आ रही थी, फिर धोए 10 बार हाथ धोए तो भी बदबू आ रही थी, रगड़ रगड़ के धोए, है ना, और इतने साल हो गए उस बात को, 45-46 साल हो गए अभी, तो अभी भी उसमें बदबू आती है, रियली बदबू आती, वही बात याद आ जाती है ना। तो अल्पकाल का सुख क्या है, मैंने मोती की तरफ आकर्षित हुआ ना मैं, कि मोती उठा के देखे, 5-7-8 मोती तो पड़े थे, मैंने कहा मोती पहले चेक करते कि सचमुच मोती है कि नहीं, तो मोती तो नहीं था ना। ऐसे ही जीवन में जो भी अल्पकाल का सुख है ना, कि हम कहते हैं हम MBBS करेंगे, हम MD करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सुख मिलेगा, या हम ये बिजनेस करेंगे तो सुख मिलेगा, तो सुख मिला क्या, MBBS भी कर लिया, MD भी कर ली, उसके बाद भी डिग्री कर ली, तो सुख तो नहीं मिला। फिर कोई कहता हमें शादी करेंगे, शादी करके सुख मिला, मिला नहीं मिला, माताएं बताओ सुख मिला, भाई लोग बताओ सुख मिला, कितना सुख मिला, वही उंगली वाली बात है ना, काट भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते, नहीं है ना। कोई भी किससे पूछो, मैं तो इतने सारे पेशेंट्स आते हैं ना, हार्ट वाले, डायबिटीज वाले और बीमारी वाले, तो हमेशा युगल के साथ बुलाते हैं, तो मैं पूछता हूँ वैसे ओपनली, मैंने कहा आपको शादी किए कितने साल हो गए, क्या आप खुश हो, तो नहीं, सबसे बड़ी गलती की है जीवन की ना, शादी करके सबसे कोई भी खुश नहीं है, ना कोई भाई लोग खुश है, ना कोई बहनें माताएं खुश है, कोई भी खुश नहीं। फिर बच्चा हो जाता है, कहते बच्चा होगा खुशी मिलेगी, तो बच्चा होने से खुशी मिली क्या, खुशी तो नहीं मिली, बेटा हो चाहे बेटी खुशी तो नहीं मिलती है ना, मिलती क्या, कार ले लो, कार ले लो तो फिर उसकी रोड टैक्स, कितनी सारी बातें होती हैं, वो भी परेशानी, कोई इसको छू दे, कोई स्क्रैच पड़ जाए तो दुखी नहीं, हर समय टेंशन बनी रहती, नहीं बनी रहती, मतलब थोड़ा सुख मिलता है पर दुख कितना मिलता है, कुछ भी ले लो दुनिया में, कुछ भी ले लो है ना, तो जितना बड़ा कुछ भी दुनिया में सो कॉल्ड सुख मिलता है, दुख उसमें बहुत पीछे दुख समाया होता है, नहीं ठीक बात है गलत है? तो सुख कहते, सुख कहां से, कौन सा सुख है ना, कि सुख की हम बात कर रहे हैं, खुशी की बात, सदा खुशी रहती है क्या, इसे बात करते हैं अंदर की बात है, अंदर संतुष्ट, क्योंकि हम ब्राह्मणों को पर सदा खुशी क्यों रहती है, हम सदा सच्चा ब्राह्मण सदा खुश क्यों रहता है, देवताओं को सदा खुश दिखाते हैं, कभी कोई, कभी कोई देवता देखा उदास, देखा आपने कभी कोई उसकी फोटो में मुस्कुराते उदास होकर बैठा कोई देवता, कोई भी मूर्ति उदास वाले देवता की है क्या, रूठे हुए देवता की है क्या, कोई भी मूर्ति नहीं, तो उदास वो सुख, वो सुख, वो सदा सुखी क्यों है बताओ, हाँ जी, देने के संस्कार, तो ये जो खुशी है ना, जो ये जो खुशी क्यों होती है, इसका साधन क्या है, इसका या तो कहीं खुशी का पासवर्ड क्या है ना, कहते हैं डालते ना पासवर्ड, तो कंप्यूटर मोबाइल खुल जाता है ना पासवर्ड डालने से, कंप्यूटर भी खुलता है पासवर्ड डालने से, तो अब समझते हैं कि खुशी क्या चीज है, कैसे है, बाकी हाँ ये देने वाली बात है, देने से क्या होता है, सपोज मैं कुछ भी देता हूं तो क्या होता है, हमें देने से हमें क्या खुशी क्यों मिलती है, देने से जो सामने वाले को देते हैं ना उससे दुआएं मिलती हैं, और कितनी देर दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलती रहती हैं, कुछ भी देंगे तो दुआएं मिलती रहती हैं, जब भी उसे याद आएगी तो दुआएं देगा नहीं देगा, देगा या देगी, राइट। इसी पे छोटी सी कहानी है, जैसे ना वैसे तो कहानी में कोई सुनाता नहीं, छोटी सुना देता हूं। तो एक राजा था, तो राजा के पास बहुत सारी, राजा के पास बहुत पैसा था, तो राजा ने सोचा कि मैं ना अभी, उसके मन में आया कि दान करना चाहिए है ना, तो उसने एक दिन अनाउंसमेंट कराया कि भैया आप जो भी है मेरे पास आएगा ना उसको मैं कुछ ना कुछ दूंगा, तो बहुत सारे आके लोग लगे लाइन में और राजा देना शुरू किया, लोग जैसे कोई देता था कुछ जो भी चीज देता था तो लोग उसको दुआएं देते थे, राजा मुस्कुराता था, एक फकीर भी लाइन में लगा हुआ था, तो फकीर का नाम, फकीर ने देखा कि राजा को जब भी देता है लोग उसको दुआएं देते हैं, राजा के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट आती है, बहुत मुस्कुरा रहा होता, बहुत नशे में आता है तो राजा, तो फकीर ने कहा ये तो बहुत खुश है, तो उसने कहा, जब उसका नंबर आया उसने कहा कि अपने से पीछे वाले को आगे कर दिया, तो उसको जब उसने उसको उसको फिर उसने नंबर तो उसका था, तो उसने आगे किया, उसने क्या कि वो भी उसको भी खुशी, उसने कहा बहुत थैंक्स, उसको धन्यवाद कहा ना कि आपने अपना नंबर काट के मेरे को आगे किया, तो उसने भी उसको भी खुशी मिली, फिर दूसरा उसके बाद वाला उसको भी अपने से आगे कर दिया, तो राजा तो खुश हो रहा था किंतु वो देख रहा था, वो देख रहा था ये भी खुश हो रहा है, तो ऐसे बिना दिए, बिना वो तो कुछ सौगात दे रहा था और ये क्या दे रहा था, अपनी बारी दूसरे को दे रहा था, टर्न थी ना उसकी, वो उसको दे रहा था कि तुम ले लो, तुम ले लो, तो सब ले लिया, सब कुछ में सबका नंबर पूरा हो गया, अब लास्ट में वो रह गया, उसने कहा आओ महाराज आप भी ले लो, उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी, बहुत बदन, चला गया। तो फिर राजा ने बाद में जाके ना उसके गुप्तचर होते ना, उसने कहा मैंने इतनी सारी चीजें बांटी हैं, पब्लिक क्या कह रही है पता करके आओ, तो लोगों ने जाके, जब गुप्तचर ने जाके देखा ना, जासूस होते ना राजा के, तो उसने वो तो महिमा कर रहे थे राजा की, राजा ने ऐसे किया, राजा ने, पर लोग फकीर की भी महिमा कर रहे थे कि फकीर जो था वहां पे खड़ा था वो अपनी लाइन अपना नंबर छोड़ के हमें आगे कर रहा था, आगे कर रहा था, तो उसकी महिमा भी बराबर कर रहे थे, राजा के तो पैसे थे, धनवान था, फकीर के पास कुछ भी नहीं था, पर उसने अपनी टर्न नहीं दी, तो भी तो खुशी कहां से मिलती है, क्या देने से, पैसा देने से, कुछ भी देने से है ना, उसने तो कुछ दिया नहीं ना, सिर्फ क्या दिया, अपनी टर्न देना, तो उसको भी खुशी मिल गई, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ दें, फिजिकली कुछ दें तो भी खुशी, तो खुशी हमें ऐसे मिलती है। तो खुशी के लिए अभी सबसे बड़ी बात क्या है, खुशी के एक चेकिंग बाबा ने बताया। बाबा ने कई बातें हर मुरली में कुछ ना कुछ बात खुशी की होती है। तो बाबा क्या कहते हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ा खजाना है कौन सा है, खुशी। सब कुछ बाबा कहता है, प्राण भी चले जाए, शरीर भी चला जाए, पर क्या ना जाए, खुशी ना जाए, है इतना दम है। कोई मर भी जाए खुशी ना जाए, बाबा क्या कहता है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे, इसका क्या मतलब है, चलो इसका मतलब अर्थ बताओ, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। हम रोज हलवा खाते हैं, नहीं खाते हैं? हम रोज हलवा खाते हैं, कौन सा हलवा खाते हैं, ये मुरली हलवा है ना, राइट। तो अम्मा मरे तो भी मुरली सुननी है, नहीं, बीवी मरे तो भी मुरली सुननी है, नहीं, ये मुरली हलवा है, सही बात है, नहीं सही बात है। या फिजिकल हलवे की बात है, फिजिकल हलवे की बात करते हैं, भोग लगाते हैं फिर हलवा खाते हैं, है ना। तो जरूर नहीं कि हम भोग वैसा लगाएं, है ना। आपको डायबिटीज है, हलवा कैसे खाओगे, खाओगे? आपको डायबिटीज है, शुगर आपकी 400 रहती है, तो हलवा खाओगे? डॉक्टर ने साफ मना किया, पर कौन सा हलवा खाना, हमारा हलवा कौन सा है, हमारा सूक्ष्म हलवा कौन सा है, मुरली हलवा है ना, ज्ञान हलवा है ना, राइट। तो हमें जो है हमारा, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, और भी कहा बाबा ने, खुशी जैसी खुराक नहीं, कहा ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। हम लोग जो अमीर लोग होते हैं, कितने सारे विटामिन खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, कितनी कितनी चीजें खाते हैं, और फिर भी देखो तो क्या होता है, बीमार रहते हैं, 5-10 तरह के रोग रहते हैं, नहीं रहते। सलाद भी खाएंगे, फिटनेस जिम में भी जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना, सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। और हमारे यहाँ काम वाली माताएं आती है ना, ये जो ग्रासीय लोग है ना, जो भीलनी होते हैं, जो ग्रासीय लोग हमारे घर में आते हैं ना, शांतिवन में भी आते हैं, यहाँ भी पांडवन में भी आते हैं, आसपास के आदिवासी लोग होते हैं, पतले दुबले होते हैं, मुश्किल मतलब मुश्किल से बहने बहने माताएं उनकी 40-45 किलो की होती हैं, पर वो पूरी अलमारी को हिला देती है, हमसे नहीं हिलती है, हमसे नहीं हिलती है। दो बहने मिलके भी, दो भाई मिलके भी हिला नहीं सकते, वो अकेले हिला लेते हैं। वो खाते क्या है, बाजरे का रोटला और मिर्च, लाल मिर्च पानी लगा के लाल मिर्च लगा खा लेते, सब्जी भी नहीं खाते। वो कौन से विटामिन खाते हैं, वो कौन से टैबलेट्स खाते हैं, फिर उनकी ताकत कौन सी आई उनके अंदर। और बहुत काम करते हैं सुबह से लेकर काम, कितने घरों में काम करते हैं, कितने पूरा डायमंड हॉल साफ करते हैं, पूरी जगह साफ करते हैं, पूरी बहुत सारे काम करते हैं, उनमें ताकत कहां से आती है। खुशी जैसे खुराक नहीं ना, तो इसको हम समझते हैं कैसे, खुशी जैसे खुराक, खुशी क्या चीज है ना। एक तो बताया मैंने अंदर की बात है, अब खुशी की बाबा ने एक चेकिंग दी हुई है कि अगर थोड़ी भी आपकी खुशी जाती है, थोड़ी भी खुशी जाती है, इसका कारण क्या है, कोई ना कोई अपवित्रता है, कहीं ना कहीं अपवित्रता है ना। तो अपवित्रता जो इसका जो पासवर्ड कहें ना, या कहें वीजा कहें या पासवर्ड कहें, पवित्रता क्या है, वीजा कौन सा है, खुशी का कौन सा है, पवित्रता। जितनी ज्यादा पवित्रता होगी ना, उतनी ज्यादा खुशी होगी। देवी देवताएं पवित्र है ना, नहीं, संपूर्ण पवित्र ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, किसी विकार का अंश भी नहीं है, राइट। तो वो सदा खुश है, सदा मुस्कुराते रहते हैं, नहीं। और जितने भी पतित हैं धरती पे, आज कितने पतित हैं, कितने पवित्र हैं बताओ, चलो धरती पे कितने पवित्र आत्माएं हैं, एक भी नहीं है, नहीं, क्योंकि दुनिया कैसी, कौन सी दुनिया, पतित दुनिया ना, तो एक भी पावन नहीं ना। भले हम पावन बन रहे हैं, पर बन गए क्या, संपूर्ण पवित्र बन गए क्या? वेर इन द प्रोसेस ना, संपूर्ण पावन नहीं बने ना अभी। संपूर्ण पावन कोई है बना है अभी? कोई भी नहीं धरती पर, तो पावन तो कोई भी नहीं है। तो पवित्रता अगर हमारे अंदर आ जाएगी, ऐसी दुनिया बन जाए जहां सब पवित्र होंगे, तो वहां पर सदाई खुशी होगी। और जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, उतना उतना हम खुशी में रहने लगेंगे। राइट, आज के मुंडली में भी था एक पॉइंट था ना, कौन सा, हम सभी कौन है, कौन सा युग है अभी, संगम एक पुरुषोत्तम युग है, और हम सभी कौन है, अविनाशी पुरुषोत्तम है। अविनाशी पुरुषोत्तम के साथ किस, कब है अविनाशी पुरुषोत्तम, अगर बाप के साथ कंबाइंड है तो हम अविनाशी पुरुषोत्तम है। संगम का मतलब क्या होता है, मिलन। राइट, अगर आत्मा परमात्मा से कंबाइंड है तो हम सदा कौन है, अविनाशी पुरुषोत्तम है। राइट, और बाबा ने लास्ट पेज पे कहा ना, पुरुषोत्तम माना जीवन मुक्त स्थिति, जीवन मुक्त। राइट, तो अगर हम बाप से कंबाइंड है तो हम मुक्त भी हैं, जीवन मुक्त भी हैं। अगर हम, वैसे तो हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म है, उससे चुकते होंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मुक्त माना 63 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई, और सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे तो हम जीवन मुक्त कहलाए जाएंगे। किंतु अगर बाबा से कंबाइन है, सरल संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइन है, या जैसा स्थान जैसा समय जैसा कार्य, तो वैसे ही हम अगर बाबा से कंबाइंड रहते तो हम क्या है, हमें 63 जन्मों के पाप कर्म छू नहीं सकते, लगातार पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, और साथ साथ देवी गुण भी धारण हो रहे हैं, सर्वगुण भी धारण हो रहे हैं, और 16 कला संपूर्ण बनते जा रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते जा रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनते जा रहे हैं, और अहिंसा परमो धर्म भी बनते जा रहे हैं। तो यही एक तरीका है कि जब से हम बाबा की छत्र छाया में आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, अगर ये सच्चे ब्राह्मण बन गए, ये नशा है कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, क्योंकि हमने दादियों को देखा है, दादियों को देखा, दादियों को सदा खुश देखा, अभी दादियां तो नहीं है, सदा खुश देखा, किसी बात में भी कुछ भी हो जाए, कितना मर्जी नुकसान हो जाए यज्ञ में, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितने होता है सेंटरों की न्यूज आती है, मधुबन में भी कुछ कुछ बातें होती रहती है कभी कभी, दादियां, एक दादी है बड़ी दादी है, तो उसने छुट्टी बड़ी दादी ने शरीर छोड़ दिया, किसी ने भी शरीर छोड़ा, बहुत सेवाएं करते हैं, तो दादियों को मैं देखा, तब भी दादियों को जरा भी दुख नहीं होता, साक्षी अवस्था रहती, मुस्कुराते रहते, तभी चेहरे पर कभी गम नहीं आया, बड़ी दादी को चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा, जरा भी गम का चिन्ह नहीं था। हम शाम को न्यूज आई, दादी के पास गए, फिर सुबह अमृत वेला में योग करने आते थे पांडव में हॉस्पिटल से, तब भी हम देखा दादी के पास जरा भी, अमृतकर दादी ने योग कराया, फिर दादी कमरे में गया, दादी को मैंने कहा दादी जी ठीक है, तो डॉक्टर क्या मेरा बीपी चेक करना चाहते हो, दादी गई, दादी चंद्रमणि गई, तो मेरा बीपी ऊपर नीचे हुआ हुआ, चेक करके देख लो, है ना, तो 4:45 बजे, तो मैंने देखा 4:45 बजे बीपी, दादी का तो बीपी जरा भी जैसे तो रोज होता था वैसे ही होता, ऐसे था, मतलब एक मिनट में भी ऊपर नीचे हुआ नहीं हुआ। देखो दादी की वो एडिशनल चीफ थी ना, दादी चंद्रमणि, दादी के बहुत पक्के साथी होते ना, तो उनको जरा भी फीलिंग, जरा भी बात नहीं थी ना। तो प्रैक्टिकल में दादियों को, कोई भी दादी, निर्मल शांता दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, कितने भी यज्ञ में अपहवल आए, कितनी परेशानी आए, किंतु दादियों को कभी भी उनके चेहरे पे, उनके मन में कोई भी, मतलब सदा खुशी क्या होती है वो हमने दादियों में देखी। कितनी शरीर की बीमारियां आई, निर्मल शांता दादी कितने समय बीमार रही, बड़ी दादी भी कैसे रही, जानकी दादी, गुजार दादी भी कैसे, पर किंतु चेहरे पे खुशी सदा बनी रही। गले में वेंटिलेटर ट्यूब डाली हुई है, यहां से ट्यूब डाली हुई है, और यहां भी इंजेक्शन जा रहे हैं, दवाइयां जा रही हैं, शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, स्वेलिंग हो गई बॉडी में, पर उनके चेहरे की खुशी कभी कम नहीं है। क्यों? आपको हमें कुछ होता तो क्या होता है, कहीं थोड़ा दर्द को सुई भी लगाए तो क्या होता है, वो दादी को सुई लगाई ना, यहां से सुई लगाई, वो लगाते ना इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन यहां लगाया, दादी कुछ नहीं कहेगी, फिर चलो यहां लगा लो, फिर यहां लगाया, यहां भी नहीं लगाया, लगा फिर दूसरा हाथ दादी कहेगी इसमें लगा लो, है ना, अपने आप ही लो इसमें लगा लो, आप क्या करोगे? दो बार नहीं लगा तो क्या करोगे? मैं नहीं लगवाना, नहीं? तो खुशी मतलब एकदम न्यारी प्यारी अवस्था कैसे बने? पवित्रता की कितनी गहराई होनी चाहिए, कैसे हमारी वो स्थिति बन जाए कि हम सदा खुश रहे बाबा से सदा, क्योंकि हम अगर इतनी पवित्र तभी तो बाबा से कंबाइन रह सकते हैं। बाबा का श्रीमत क्या है? पवित्र भव योगी भव, पवित्र है तो योगी है, पवित्र नहीं है तो योगी नहीं है, है ना? और योग लगेगा तो और पवित्र बनेंगे, फिर पवित्र बनेंगे और तो और ज्यादा योग लगेगा, फिर और योग लगेगा तो और ज्यादा पवित्र बनेंगे। क्या पता मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ? क्या पहले हुआ? पहले पवित्रता चाहिए, पहले योग चाहिए? हाँ जी, पहले तो पवित्र तो बनना पड़े, कुछ लेवल की पवित्रता चाहिए ना, कुछ लेवल की पवित्रता चाहिए ना, योग लगना शुरू होगा, फिर योग लगेगा और पवित्रता आएगी, योग लगेगा तो और पवित्रता आएगी, फिर मुरली समझ में आएगी, फिर और पवित्रता आएगी, फिर और योग लगेगा, फिर योग लगेगा तो और मुरली समझ में आएगी, है नहीं? नहीं ऐसा तो मतलब ऐसे हम धीरे धीरे हमारी डिग्री बढ़ती जाती है, चलते हैं हम इसके आगे गहराई में समझने चलते हैं कि हमारी तो हम अगर हमें खुशी नहीं है तो इसका मतलब चेकिंग क्या करनी है हमको, पासवर्ड क्या है? पवित्रता। अगर पवित्रता है, बिना पवित्रता की खुशी नहीं आ सकती। अलपकाल की खुशी आएगी काग विष्ठा के समान वाली, वो याद रखना, छोटी उंगली वाली ना, है ना? राइट, है ना? तो वो खुशी आएगी जो दुखदायी होगी, है ना? आप चाहोगे वो खुशी तो मिली, पर क्या कैसे मिली आप सब अनुभव हो चुका है आपको, सबको सब ने देखा ना, हर तरह का अलपकाल का सुख लेके देखा है ना, उस खुशी नहीं है, थोड़ी सी देर की खुशी अच्छी। बाबा दादी बड़ी दादी कहा करती थी, दुनिया की खुशी क्या है बेसिकली, कोई आपको गिफ्ट देता ना, गिफ्ट गिफ्ट पैक देता ना, आपका बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट पैक में पहन करके देता है ना, उस पर फिर वो फूल वूल भी लगा देते हैं और अंदर से लगा देते हैं, तो ये क्या है? डस्टबिन खुशी क्या है? सुने खुशी डस्टबिन है, किसमें? गिफ्ट पैक में बंधी हुई, किसमें बंधी हुई? जो भी दुनिया की खुशियां हैं वो क्या है? डस्टबिन है, किसमें? गिफ्ट पैक में बंधी हुई। चाहे नाम मान शान मिल रहा हो, लोग आपको किसी तरह की सम्मान मिल रहा हो, आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिल रहा हो, वो भी क्या है? नोबेल प्राइज मिल रहा हो दुनिया में, वो भी क्या है? डस्टबिन है, किसमें बखी? किसे बन? गिफ्ट पैक में बनी। और फिर जैसे जैसे खोलोगे ना उसको, लेयर वाइज दुख निकलते हैं, लेयर वाइज कचरा ही कचरा निकलता है। आप सोचते हो शायद इसके नीचे कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा, पर लेयर वाइज क्या निकलता है? बड़ी दादी का ये वर्ड था कि दुनियावी खुशियां जितनी भी है ना, वो क्या है? डस्टबिन है, कचरे से भरी हुई, गिफ्ट पैक में बंधी हुई। जितना खोलोगे इतने गहराई में जाओगे ना दुनिया के सुखों की गहराई में, उतना क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जितना गहरे जाओगे उतना और बदबू वाला कचरा निकलेगा। इसे कभी इसके भागो, सारी उम्र हमारी इसी में बीत जाती है। अभी खुशी मिलेगी, मरीज का होती ना मिराज होता ना, रेगिस्तान में जाते ना, दूर क्या दिखाई देता है? पानी। पास पहुंचो तो रेत होती है, कुछ भी नहीं। सड़क पर भी दिखाई देता है, सामने पानी, धूप में होता है ना, और जाओ तो पानी नहीं होता है ना। तो यही सारी उम्र ये मरीचिका या मिराज ना, ये यही हमारे जीवन में लगे, लोग इसी खुशी में इसी में लगे रहते हैं, बस अभी खुशी मिली, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, कभी भी नहीं मिलती है। तो हमें जो सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, जब हमें पवित्रता चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पहले तो हमको याद रहना चाहिए, हमें क्या याद रहना चाहिए? हाँ, अपना दिव्य ब्राह्मण जन्म याद रहना चाहिए कि हमें शिव बाबा ने क्या दिया, हमको ब्रह्मा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, क्योंकि हमारा ये मर्जीवा जन्म है। और जैसे ही हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है तो हमें क्या, हमें दो गिफ्ट मिल जाते हैं। कौन कौन सी गिफ्ट मिलती है? मुरली में इस पर एक मुरली इस पर चली हुई है, कौन सी गिफ्ट मिलती है? हमारी बर्थडे गिफ्ट है। कौन सी बर्थडे गिफ्ट है? जन्मदिन की गिफ्ट है हमारी, दो सबको मिली है। कौन कौन सी? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। तो दो गिफ्ट हमें मिलते, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म हमें ये याद रहे कि मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म शिव बाबा ने दिया है, ब्रह्मा ये मर्जीवा जन्म है, तो और जैसे ही बाबा दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलता है तो हमारे दिल में क्या कौन आ जाता है? दिल में जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है ना, पैदा होते उसके दिल में कौन आ जाता है? दिल माना ये दिल नहीं, आत्मा का दिल, चेतना, कॉन्शियसनेस, उसमें क्या आ जाता है? उसमें उसकी मां दिल में आ जाती है। तो बच्चे को हमेशा उसकी मां ही दिल में रहती है ना, और मां के दिल में क्या आ जाता है? बच्चा आ जाता है। उसके पहले तो कुमारी थी, शादी नहीं हुई थी, अब बच्चा हो, बच्चा पेट में था तो बच्चे के सारा टाइम उसके बारे सोचती है, तो मां के दिल में बच्चा आ जाता है, बच्चे के दिल में मां आ जाती है। अब ऐसे ही जब हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है तो हमारे दिल में कौन आ गया? चेतना में शिव बाबा आ गया। तो अगर ये सारा दिन ये बुद्धि दिल में रहे कि मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मेरे को दिव्य ब्राह्मण जन्म, दिल में कौन आ जाएगा? शिव बाबा। शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है ना, सत्य की समझ का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। तो बाबा के साथ एनर्जी को हम अगर बार बार रियलाइज करें ना, मेरे दिल में कौन बैठा हुआ है? एक मुरली थी ना, बाबा ने कहा था, क्या कहा था? बाबा को कौन सा स्थान पसंद है? बाबा कहाँ रहता है? कौन से दिल में रहता है? बच्चों को दिल में रहता है। कौन से? इस दिल में रहता है कि इस दिल में रहता है? कहाँ? इस दिल में रहता है, आत्मा रूपी दिल में रहता है ना। तो बाबा यहां दिल में बैठा है। अगर मेरी दिल सच, अगर मेरी सचमुच मुझे याद है कि मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म है तो बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ। उसी को बार बार रिवाइज रियलाइज करना चाहिए कि मेरे दिल में कौन है? सत्य के समझ का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। सच्चे दिल से महसूस करो मेरे दिल में बाबा बैठा हुआ। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अगर मुझे सदा खुश रहना है तो क्या क्या मैं बार बार महसूस करना चाहिए? रियलाइज में ना, सच्चे दिल से महसूस करना, बार बार रिवाइज करना, मनन करना, मनी मन में मनन करना और रियलाइज करना बाबा मेरे दिल में बैठा है। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सच्चे स्नेह का सागर, अतिंद्र सुख का सागर, आनंद का सागर है ना, सत्य को आठ शक्तियों का सागर, सत्य को प्रकने की शक्ति का सागर, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर, समेटने की शक्ति का सागर, समेट के फिर क्या करता है बाबा? अशरीर स्थिति का सागर, निराकारी स्थिति का सागर और बीज रूप स्थिति का सागर, सहन करने की शक्ति का सागर, समाने की शक्ति का सागर, सामना करने की शक्ति का सागर, सहयोग करने की शक्ति का सागर। कहाँ बैठा है? मेरे दिल में बैठा हुआ। तो अंदर मेरे दिल में कौन बैठा हुआ है? ये बार 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 क्या करो, महसूस करो तो क्या हो जाएगा? मेरा बाप कौन है? अतिंद्र सुख का सागर, आनंद का सागर है, और मैं कौन हूं? मैं दुखी हूं। और बाप कितने दूर बैठे? यहां तो बैठा ना बाबा। तो और प्लस सातवें एनर्जी के बैलेंस का भी सागर है वो। सातवें एनर्जी का बैलेंस है ना, मनुष्यों में नहीं होता है, ब्राह्मणों में नहीं होता है। कभी समय ज्ञान ज्यादा है, पवित्रता कम है, पवित्रता है थोड़ी तो शांति कम है, शांति नहीं है तो प्रेम कम है, किसी में शांति प्रेम भी है तो खुशी कम है, कोई ना कोई एनर्जी कम हो जाएगी। कि तो वो सातवें एनर्जी का बैलेंस का सागर है। जब सातवें एनर्जी का बैलेंस है तो हीलिंग एनर्जी का सागर बन जाता है। सातवें एनर्जी हमारी हमारी हम अपनी बीमारी को हील क्यों नहीं कर पाते? मेरे मन में दुख हो रहा है, मुझे कोई फीलिंग आ रही है, हम हील क्यों नहीं कर पाते अपनी अपनी प्रॉब्लम को? कि उसके सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं है। अगर मेरे अंदर भी सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, मेरी मेरी आर्टरीज खुली बंद हो तो खुल जाएगी, मेरी डायबिटीज खराब, मेरी डायबिटीज है कंट्रोल नहीं तो डायबिटीज ठीक हो जाए, मेरे घुटने में दर्द है घुटने का दर्द ठीक हो जाए, कमर का दर्द ठीक, पेट में दर्द है पेट का दर्द ठीक हो जाए, कोई बात मुझे फीलिंग आ रही है, मैं फीलिंग खत्म हो जाए। सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं इसलिए, और वही ज्वालामुखी शक्तिशाली योगिनी का सागर की है। तो बार 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 सबसे अच्छा तरीका जो है ना, बाबा के साथ सदा खुशी में रहने का आधार यही है कि मेरा कौन है, कौन है मुझे, कौन मिला है मुझे, ये नशा आ जाए ना अंदर से, कौन मिला है मुझे, मैं किसका हूं, किसने मुझे चुना है, किसने मुझे जन्म दिया है, मेरा माता पिता कौन है, सारा टाइम ये बुद्धि में रहे तो क्या होगा। और जब दिल में बाबा है तो दिल में बाबा ने पहली पहली आज्ञा क्या दी है, पवित्र भव योगी। ये है सच्ची दिल में, जिसमें बाबा है वो सच्ची दिल है, और साफ दिल में जिसमें बाबा की श्रीमत समाई हुई है, मुझे पवित्र बनना है, पवित्र भव तो योगी भव, बस पवित्र मैं पवित्र। पहले पहला स्टेप कौन सा है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी तो योग लगेगा। अगर थोड़ा भी ब्रह्मचर्य कम है, थोड़ा भी ब्रह्म किसी में दृष्टि विदृष्टि आती है तो योग लग नहीं सकता। तो ब्रह्मचारी ना, पहले तो ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। तो ये हमारी स्थिति योग, तो इसको बोलते साफ दिल। तो सच्ची दिल साफ दिल है ना, तो ये किसका है, ये किसका, सच्ची दिल साफ दिल तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तंत्र खुल जाता है। तब हमें मुरली की समझ आने लगती है, राइट, ज्ञान की समझ आने लगती है। नहीं तो मुरली हमें समझ नहीं आती, मुरली में कितनी गहराई है, ज्ञान की गहराई तब समझ में आती है। एबीसीडी ज्ञान माना, एबीसीडी ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तब हमें ड्रामा की गहराई भी समझ में आती है। तो जब ज्ञान की गहराई समझ में आती है, ज्ञान की गहराई समझ में आती है, तो हमें क्या ऑटोमेटिक, जब ए बी सी डी समझ में, सी माना संबंध और डी माना ड्रामा, जैसे ड्रामा की गहराई समझ में आती है तो हमको एकदम से क्या फील होता है, नहीं, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप याद आ जाता है, परम धाम वाला, और आदि देवी देवता स्वरूप याद आ जाता है। और ये स्टेज है, पहली पहली स्टेज है पवित्रता की। तो पवित्रता अपना परम धाम वाला सत्य स्वरूप है, और आदि देवी देवता स्वरूप सत्य स्वरूप है। तो ये हमें याद आ जाए तो क्या, ये है पवित्रता की पहली स्टेज, अपने अनादि स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर के हर संकल्प बोर्ड कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, ये पहली डिग्री है पवित्रता की। तो ये भी नशा क्या है, ये खुशी में लेके आएगा, अपना परम धाम वाला स्वरूप याद रहेगा और आदि देवी देवता मैं देवता था, तो खुशी आएगी नहीं आएगी। मैंने बात की ना आपसे, पवित्रता क्या है, खुशी का पासवर्ड है। तो पवित्रता की पहली स्टेज पे भी आपको खुशी आएगी। वैसे तो दिल में बाबा ये भी खुशी आती है ना, राइट, साफ दिल अगर श्रीमत तो भी खुशी आती है ना, किंतु जैसे ही दिव्य दृष्टि रूप ज्ञान तंत्र खुलता तो हमें मुरली की गहराई समझ में आने लगती है, वरदान की गहराई समझ में लगती है, स्लोगन अव्यक्त इशारा समझ में आने लगता है। तो और हमारी स्टेज हमें एकदम ऑटोमेटिकली फील होने लगता है कि मैं कौन हूँ, परम धाम में कैसा था, और मेरे सत्य स्वरूप याद आने लगता है। अपना स्वरूप याद आया, पर दूसरे का भी यही स्वरूप इमर्ज कर लो, परम धाम वाला और देवी देवता स्वरूप, तो सेकंड स्टेज पवित्रता की। पर थर्ड स्टेज क्या है पवित्रता की, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव। थोड़ा भी किसी से भी लगाव है ना, हम रिटर्न जर्नी पे है ना, तो ऐसे ऐसे आप देखें, आप खुद भी अपनी लाइफ में देख लो, आपको लगाव नहीं था, बाबा के बने लगाव नहीं था, चलते 10 साल हो गए, 8, 5 साल 12 साल हो गए, आप किसी से लगाव हो जाता है, लौकिक में नहीं था, लौकिक से लगाव हो जाता है, उसके किसी ने को क्लास कराई, किसी भाई ने बहन ने, उसी क्लास में लगाव, इसने बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, ये बहन तो बहुत अच्छा गाना गाती है, ये भाई तो बहुत अच्छा गाना गाता है, गाते ना गीत, कई भाई बहन गाते ना गीत, कोई क्लास भी कराते हैं भाई बहन, ये तो बहुत अच्छी क्लास, ये तो बहुत अच्छा, तो हमें किसकी क्लास थी वो, ज्ञान किसका था, बाबा का, बाबा से लगाव होना चाहिए था, हमें क्या हो गया, उस भाई बहन से लगाव हो गया, नहीं उसके झुकाव हो गया, उसके प्रति उसके प्रभाव में आ गए। क्या मुरली याद है आपको बाबा की, बाबा ने क्या कहा था, किसी के प्रभाव में आना माना उसकी प्रजा बनना, नहीं किसकी प्रजा बनना, प्रजा बनना राजा बनना, किसी भी क्लास कराने वाले भाई बहन के प्रभाव में आ गए तो क्या क्या बन जाएंगे, उसकी किसके किसकी वंशावली में आएंगे, उसी की वंशावली में आएंगे, ब्रह्मा बाबा की वंशावली में आना, कि विष्णु के कृष्ण की वंशावली में आना ना, या उस भाई बहन की वंशावली में आना। तो ये भी आप पवित्रता है, किसी भी देहधारी से लौकिक या अलौकिक देहधारी के लगाव में आना, झुकाव में आना, प्रभाव में आना या टकराव में आना, पूरे विश्व में किसी एक व्यक्ति से भी टकराव है ना, तो आपकी पवित्रता आपकी खुशी गायब हो जाएगी, नहीं होगी गायब। लगाव आया किसी से खुशी रहेगी, झुकाव आया तो, प्रभाव आया तो खुशी गायब। ये तीसरे लेवल की पवित्रता है। फिर किसी बात में भी क्या क्यों कैसे आया ना, तो क्या हो जाएगी, खुशी गायब। ये चौथे लेवल की पवित्रता है। मतलब वैध संकल्प आना, साधारण संकल्प आना भी है पवित्रता है। यस और नो, यह गलत बता रहा हूं, चेक करके देखो क्या क्यों आया तो क्या होता, खुशी गायब होती नहीं होती। कहते ना पांच रास्ते हैं खुशी गायब होने के या दुख आने के, अशांति आने के। कौन कौन से हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन, ये पांच तरीके हैं खुशी को खो जाने के या दुख अशांति आने के। नहीं तो क्या, क्यों, कैसे सही, कब और कौन सही, हमारे सारे वैध संकल्प पैदा होते हैं। और बाबा की तो मूल्यां कितने चली हैं, अव्यक्त मूल्यां चली ना कितनी सारी, कि वैध संकल्प से मुक्त बनना है। एक एक सेकेंड हमारा कितना कीमती है, एक संकल्प कितना कीमती है, 21 जन्मों से कनेक्शन है। तो हमें क्या करना है, तो व्यर्थ भी ना चले। अगर सच्ची दिल साफ दिल है, श्रीमद पवित्र भव योगी भव है, तीसरे नेत्र खुला हुआ है, थोड़ा भी दिल में अगर देह अभिमान आया तो बाबा तो चला जाएगा, भाग जाएगा। नहीं बाबा, बाबा क्या कहते हैं मुरली में, बाबा कैसे है, एकदम पारे की तरह खिसक जाता। थोड़ा ही थोड़ा दिल में कुछ भी बात आई ना, कुछ भी चेतना में देह अभिमान आया कोई बात की, तो बाबा निकल जाता है। तो सच्ची दिल साफ दिल नहीं रहती ना। अगर सचमुच में बाबा को हमने बार 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 अभ्यास करके दिल में बाबा को बिठा दिया है तो तीसरा नेत्र खुला रहेगा, और तीसरा नेत्र खुलेगा तो हमारे अंदर ये पवित्रता की स्टेज आती जाएगी। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, चौथी स्टेज क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन, है ना। तो चार चौथे, फिर पांचवी स्टेज क्या है, खाली काम भी कर अपवित्रता नहीं है, क्रोध आना भी अपवित्रता है, लोभ आना भी अपवित्रता है, मोह आना भी अपवित्रता है, और अहंकार आना भी अपवित्रता है। ये पांचवी स्टेज हो गई। कभी तो क्रोध थोड़ा तो आएगा ना, उसने मेरा कहना नहीं माना, इतनी बार सो कहा तो क्रोध तो क्या, क्यों, कैसे नहीं आ रहा, पर थोड़ा सा तो बेचते, थोड़ा तो रोब तो डालेंगे ना, थोड़ा सा मैं इंचार्ज हूं, ये मैं नहीं, तो साले बिगड़ जाएगा, सेंटर बिगड़ जाएगा, घर ही बिगड़ जाएगा हमारा, तो बच्चे को थोड़ा तो आंख दिखानी पड़े, नहीं दिखानी पड़े, मेरे को चश्मा लगा हुआ था मतलब 16 साल की उम्र से ना, 43 ये चश्मा रहा, और नंबर भी 3.5 हो गया था, इस आंख में 3.5, इसमें 3.25, और दूर का नजदीक का भी 1.5 नजदीक का भी हो गया था। चश्मा उतार तो कुछ दिखाई नहीं देता था, धुंधला धुंधला दिखाई देता था। तो मैं बाबा कहता, बाबा इतने सा चश्मा, चश्मे से काला काला, यहाँ भी काला काला हो जाता ना, और 60 चश्मा लगा के रखो, दिन में भी रात को चश्मा उतार देते हैं सोने के पहले, तो बाकी तो दिन में 60 चश्मा लगाना पड़ता था। तो मैंने कहा ये पापा, ये तो चश्मा तो एक हैंडीकैप्ड हो गया, मतलब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है ना, चश्मे तो बहुत खराब चीज़ है। तो बाबा ने एक दिन टच किया, किसी को आंख मत दिखाओ, आंख दिखाने से भी क्या, आंख दिखाना भी विकार है। मैं पहले के बोलता नहीं था, पर आंख से कर देता था लोग। किसी के अवगुण देखना भी विकार है। तो मैंने कहा, बाबा कहते बच्चे हंस बनो, बाबा से कंबाइंड रहो। मुरली भी कुछ दिन ऐसी थी, तो बाबा ने कहा हंस बनो, बाबा से कंबाइंड रहो तो सबके गुण दिखाई देंगे और किसी को आंखें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उस दिन मैंने इसी बात पे पुरुषार्थ किया, किसी को आंख दिखाने बंद किए, मैंने दृढ़ता के साथ संकल्प किया और मैंने बाबा से कंबाइंड होने की प्रैक्टिस शुरू की, हर समय दिल सच्ची साफ दिल करके, और बस हमेशा बाबा से कंबाइंड होने का अभ्यास किया, सर संबंधों की मैं इंसार वाले याद से कंबाइंड होना। और मुझे लगा कि मेरा ना एक महीना ही हुआ था, तो मेरा मुझे लगा चश्मा ना मेरा नंबर बदल रहा, दिखाई देना चश्मा लगा के दिखाई देना कम हो रहा है। मैंने कहा शायद अभी नंबर बदल रहा होगा, पता नहीं, नंबर हर बार बढ़ जाता था, 3, पहले 2, पहले तो 0.5 से शुरू हुआ था, फिर 0.75 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, नंबर जब जाग वो बढ़ता ही जाता था। तो मेरे शायद नंबर बढ़ रहा होगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद हो सकता कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो फिर मैंने एक महीना और टाल दिया, तो फिर दिखाई देना बहुत कम हो गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे साथ में आई का हॉस्पिटल ना, साथ में हमारे साथ ही हैं डॉक्टर्स हैं। तो मैं कहता मेरे को चश्मा ना आज का दिखाई नहीं देता है, क्या बात है, धुंधा धुंधा नजर आता है, चश्मा उतारता हूँ थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर तो चश्मा नहीं लगा के रखता हूँ तो देखने में दिक्कत होती है। तो उसने देखा मेरा चश्मा, मेरा देखा चश्मे के साथ, तो मुझे देख पढ़ नहीं पा रहा था सामने में होता ना। फिर उसने कहा कि नहीं अभी आप उतार के देखा, फिर तो मैं सारा पढ़ लिया मैंने, तो कहते कि आपका तो नंबर तो है ही नहीं आपके अभी, है ना। तो मेरा नंबर ही मतलब अब नंबर नहीं था, अब मेरे को आंखों से 43 साल से चश्मा लगा रहा था, चश्मा उतार दो तो मेरी आंखें चेहरा ही खराब लगे। तो फिर भी मैं लगाता रहा, फिर मैंने कोशिश करने का अब नहीं लगाऊंगा, भले चेहरा कैसा भी लगे। और फिर देखो मेरे उस दिन से चश्मा हटा भी कितने साल हो गए, 8-9 साल हो गए, चश्मा ही नहीं है अभी, तो दूर का भी नजदीक का भी नहीं है। कैसे, तो बाबा से कंबाइंड है कि सबके गुण देखना शुरू किया और आंखें दिखाना बंद किया, है ना, राइट। तो आप आंखें दिखाते हो किसी को, तो क्रोध करना भी आंखें खराब करना है, पता है आपको, किसी चीज की तरफ देखना, आसक्ति से देखना, किसी व्यक्ति को देखना, वस्तु को देखना, ये भी हमारी आंखें खराब करने के समान है ना। अहंकार से भी देखना किसी को, आंखें खराब होती है, राइट। तो मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं ना, 43 ये चश्मा लगाया था मैंने, है ना, तो खुशी मिली नहीं मिली, अब मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं, चश्मा मैं दिखाई देता दूर तक, लास्ट व्यक्ति को भी मैं जान सकता हूँ पीछे बैठा ना, है ना, नजदीक वाले को भी दूर वाले को भी, है ना। तो कितना सुख मिला पवित्रता का ना, तो ये गहराई में जाओ, फिर ये तो चौथे लेवल की पवित्रता कौन सी हो गई, पांचवें लेवल की हो गई ना, और उसके बाद की पवित्रता कौन सी है, फिर आलस्य करना भी अपवित्रता है, बाबा का बन के भी आलस करना अपवित्रता है। अलर्ट होना चाहिए, सदा अलर्ट ना, और अलबेलापन भी एक्यूरेट अपवित्रता है, सदा एक्यूरेट, हर चीज में एक्यूरेट होना चाहिए, बाबा कार्य में, दुनिया के कार्य में नहीं, बाबा के हर कार्य में एक्यूरेट, टाइम पे 4 बजे 4 बजे, है ना, मुरली मना मुरली, सारा टाइम हर चीज, अलबेलापन जरा भी नहीं, है ना। किसी का अवगुण देखने में भी, अवगुण देखना नहीं, अवगुण देखना भी क्या है, अपवित्रता है। गुण दर्शन, सबके गुण दिखाई देवे, किसी में 1000 अवगुण है तो भी मुझे सबसे उसके एक ही गुण है तो एक ही गुण दिखाई देवे, जैसे हंस के सामने 1000 कंकड़ पड़े, एक मोती होते, एक ही मोती नजर आ जाता है उसको, नजर नहीं आते, तो ऐसी दृष्टि बनी है मेरी, ऐसी दृष्टि बनेगी तो योग लगेगा ना उससे। मैं किसी की बुराई देख रहा हूं सामने वाले की, योग कैसे लगेगा, बाबा से कंबाइन नहीं होंगे तो कौन क्या होगा, खुशी कहां से आएगी, तो बाबा से कंबाइन तो कुछ को गुण दिखाई देगा फिर खुशी आएगी ना, नहीं। तो गुण दर्शन, कोई मुझे गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उसको भी उसके प्रति क्या होना चाहिए, रहम होना चाहिए ना, नहीं। कोई मेरे से बदलने की भावना रख रहा है, हमेशा मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसके प्रति भी रहम होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी रहम दिल क्या करना चाहिए, निश्चय विश्वास, है ना, स्वयं में भी निश्चय विश्वास, बाबा पे भी निश्चय विश्वास, ड्रामा पे भी निश्चय विश्वास, और परिवार पे भी, लौकिक अलौकिक परिवार पे निश्चय विश्वास। तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, संशय नहीं, ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो बदलने वाली नहीं है, ये तो ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा, चिंता भय नहीं, चिंता करना भी अपवित्रता है, डरना भी अपवित्रता है, बाबा का बच्चा बन के चिंता कर रहे हैं अपवित्रता नहीं है, डर रहे हैं अपवित्रता नहीं है, बेफिक्र बादशाह और निर्भय, ये है पवित्रता, जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है, कंपटीशन कंपैरिजन करना भी अपवित्रता है, जल्दबाजी में खुशी रहती नहीं रहती बताओ, कंपटीशन कंपैरिजन में खुशी रहती है ना, नहीं रहती, खुशी नहीं रहती ना, अलपकाल की खुशी हो सकती है, मेरा नंबर उससे ज्यादा है, मेरी चीज उससे ज्यादा अच्छी है, मेरी कार उससे बड़ी कार है, पर क्या होगा, अलपकाल की होगी ना, वो उंगली वाली बात याद रखना, ठीक है, चमक रही मोती जैसी पर दुख भी वैसा ही होगा ना, नहीं। तो मतलब ये हमें ध्यान रखना, बहुत गहराई समझ लेना इस बात को कि हमें पेशेंस, धीरज, धीरता चाहिए ना, हर बात में धीरज चाहिए, और फिर इच्छा द्वेष करना भी अपवित्रता है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, शायद आपको पढ़ा, हिंदी जिसको अच्छी आती हो ना, हिंदी हिंदी वाले यूपी वाले बैठे हैं, क्रिश जो होती शब्द है, क्रिश कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण क्रिश, क्रिश का मतलब होता है ईर्ष्या, धातु है ना, क्रिश धातु है, ईर्ष्या ना, ना माना संस्कार, जिसमें ईर्ष्या का संस्कार जरा भी ना हो, प्यार ही प्यार हो, वो श्री कृष्ण जैसा, वो श्री कृष्ण बनता है ना। तो मुझे श्री कृष्ण के परिवार में आना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष होगी तो क्या होगा, श्री कृष्ण की वंशावली में तो नहीं आ सकता, उसके पास तो नहीं जा सकता, उसके जैसा तो नहीं बन सकता। तो विश्व कल्याणकारी, सबका कल्याण, तो ये क्या छह लेवल की पवित्रता होगी ना, राइट। जब ये है ब्रह्मा बाबा जैसी ब्रह्मचारी, तब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनते हैं। पहला स्टेप है ब्रह्मचारी, अनादि और आदि देवी देवता स्वरूप की स्थिति में रहकर हर संकल्प बोल कर्म करना, संबंध संपर्क में, ये है ब्रह्मचारी, जिसमें अलर्ट हो, एक्यूरेट हो, सदा क्या हो, गुण दर्शन हो, सदा रहमदिल हो, सदा निश्चय और विश्वास हो, बेफिक्र बादशाह हो, निर्भय हो, धीर्यता हो और विश्व कल्याणकारी हो, ये ब्रह्मचारी है। ऐसी स्थिति बने, मतलब संपूर्ण पवित्रता, मन सा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी पवित्रता, सत्संग सदा बाबा और मुरली का संग, फिर भोजन शुद्ध सात्विक भोजन, आंखों का भोजन भी शुद्ध सात्विक, पढ़ना भी देखना भी शुद्ध सात्विक, कानों में सुनना भी शुद्ध सात्विक, और सांस भी शुद्ध सात्विक, और खाना भी शुद्ध सात्विक, बोलना भी शुद्ध सात्विक, पीना भी शुद्ध सात्विक। तो ये हमारा भोजन, सभी कर्मेंद्रियों का भोजन कैसा शुद्ध सात्विक हो, और फिर दैवी गुणों की धारणा हो जाती है, पावरफुल अमृत पैदा हो, मुरली हो, टेंशन वेंटिलेशन। तो ऐसी स्थिति बने ना जब हमारी, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, तो जितनी पवित्रता की गहराई आएगी ना, क्योंकि कहते हैं खुशी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता, क्या खुशी, अगर खुशी, अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, नहीं खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, जैसे पवित्रता करी क्या बोलते हैं हम लोग, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की क्या है, विशेषता है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है ना, पवित्रता ही महानता है, तो खुशी ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। अगर मैं जरा भी बाबा का सब, अगर मैं अगर ब्राह्मण हूं सच्चा, जिसमें दिल में बाबा रहता है ना, और बाबा मैं बाबा के दिल में कब रह सकता हूं, अगर ऐसी पवित्रता मेरे अंदर आ जाए ना, सातों लेवल की ब्रह्मचारी बन जाऊं, तो मैं बाबा के दिल में रह सकता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे कहां रहते हैं, बाबा के दिल में, पर कौन रह सकता है, जो सातों लेवल की पवित्रता इसमें। तो जो बच्चा बाबा के दिल में रहता है और बाबा उसके दिल में रहता है, वो बच्चा क्या रहेगा, सदा। तो खुशी का पासवर्ड क्या हुआ, पवित्रता, सच्चे दिल साफ दिल, और सच्चे दिल साफ दिल से क्या होगा, पवित्रता आएगी, और पवित्रता से क्या आएगी, खुशी आएगी। खुशी से पहले भी कुछ हो रहा है, वो क्या आएगा, पवित्रता जननी है, किसकी जननी है, शांति की ना। शांति का मतलब क्या है, जो भी अभी अभी एक सेकंड पहले भी कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, तन में मन में धन में संबंध संपर्क में दुनिया में कुछ हुआ, एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। था ना संडे की मुरली थी ना, एक सेकंड में क्या बन जाओ, बिंदु स्वरूप बन जाओ। भावने का पुराने संस्कार क्या कर दो, सुहा कर दो। दधीचि ऋषि ने कहते क्या कहावत है, दधीचि ऋषि ने क्या किया, दृढ़ता के दृष्टि ने क्या किया, यज्ञ में अपने हड्डियां सुहा कर, इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा, दधीचि ऋषि का मतलब क्या है, दधीचि माने दृढ़ता से, ऋषि माने पवित्रता, ऋषि का पवित्र, ऋषि का माने क्या होता, पवित्रता, दृढ़ता से पवित्रता पे रह करके, यज्ञ माने, यज्ञ माने क्या होता बोलो, यज्ञ माने योग और ज्ञान, यज्ञ माना यह माना योग और ज्ञान माना ज्ञान, हड्डियां माना क्या, हड्डियां माना क्या, हड्डियां माना संस्कार। संस्कार कैसे होते हैं, हड्डियों के माफिक क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे हम बॉडी को जलाते हैं ना, क्या बच जाता है बाद में, जलाने के बाद भी हड्डियां बच जाती हैं। फूल लेके जाते ना कभी, सुबह सुबह चुगने जाते ना हड्डियां, और फिर नदी में बहा के आते हैं ना गंगा जी में। तो हड्डियां मतलब कैसे, कुत्ते की पूंछ को क्या कहते हैं, पाइप में डालो तो भी क्या होता है, एक साल पाइप में रखो तो फिर निकालो तो क्या होता है वापस। तो संस्कार कैसे हैं हमारे, पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार। अभी 40 साल हो गए, ज्ञान रोज मुरली सुन रहे, रोज अमृत वाला, तो भी क्या आता है, अभी भी क्या होता है, कभी कभी माथा गर्म हो जाता, नहीं कोई बात पे मेरे हिसाब से काम नहीं होता, वो तो माथा गर्म आता है, रोब डालते हैं अभी भी, चिंता होती है, फीलिंग आती है, किसी ने कुछ कहा तो फीलिंग में आते हैं, क्यों भाई, संस्कार हो गया ना। तो संस्कार को क्या करना है, पवित्रता से ही स्वाहा कर सकते हो। पवित्रता वो योग अग्नि है, पवित्रता ही वो अग्नि है जिसमें जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी ये पुराने संस्कार स्वाहा होंगे। आज कहते ना ज्वाला स्वरूप का इशारा चल रहा ना, ज्वाला स्वरूप, आज बाबा ने कहा ना ये योग अग्नि ज्वाला रूप की अग्नि क्या करेगी, भ्रष्टाचार की अग्नि और अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका, भ्रष्टाचार की अग्नि कहां जल रही है, किसके अंदर जल रही है, दुनिया में जल रही है क्या, कहां पर है? सबसे पहली अग्नि हमारे अंदर चल रही है। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, काम विकार, किसी भी देहधारी के प्रति देही की वृत्ति से देखना या व्यवहार करना ये काम विकार है, ये भ्रष्टाचार है, राइट। किसी भी देहधारी के प्रति किसी को भी देखना देह की वृत्ति से, भाई या बहन की देह की वृत्ति से देखना, ये क्या है, भ्रष्टाचार है। ये अग्नि अंदर जल रही है, ये इस रूप में भी देखना ये बहुत पैसे वाला है, ये बहुत बड़ा नाम है इसका, है ना, ये भी क्या है, भ्रष्टाचार है। अत्याचार क्या है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अत्याचार है, ये मेरे अंदर जल रही है। तो पहले इतनी ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद की अग्नि बनाओ कि वो खत्म हो जाए। और ज्वाला स्वरूप याद और ज्वालामुखी याद में क्या फर्क है बताओ, कौन बताएगा, ज्वाला स्वरूप क्या है, ज्वाला स्वरूप क्या होती है, ज्वाला स्वरूप होते 50 लकड़ी इकट्ठी जला दी तो क्या कहेंगे उसको, ज्वाला बन गई, राइट। और ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी बंद कर दो ना भट्टी बन जाती है ना भट्टी, ज्वालामुखी में क्या होता है, नीचे अंगर अंदर अग्नि जल रही होती ना, उसमें लावा जल रहा होता है और मुंह से बंद होता है, उसको ज्वालामुखी कहते हैं ना, अंदर प्रेशर में जल रहा होता है तो क्या होता है, वो ज्वालामुखी पकता है उसके अंदर, तो ज्वालामुखी वो है। तो अशरीर स्थिति ज्वाला स्वरूप याद है, अशरीर स्थिति क्या है, ज्वाला, अशरीर हमने शुरू में किया ना, देव और देखी दुनिया से रिटैच होकर अशरीर आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड हो, ये ज्वाला स्वरूप याद है। इसलिए बाबा बीच बीच में अभ्यास कराता है, अशरीर बन के परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाओ, ये देह से रिटैच होने का अभ्यास है, ये एक तरह का बेहोश करने का इंजेक्शन है, देव और देखे दुनिया से बेहोश हो गए। और फिर ज्वालामुखी क्या है, एकदम निराकारी, जब अशरीर स्थिति के अभ्यास से क्या होता है, मैंपन मेरापन खत्म होता है, मैंपन मेरेपन का त्याग, जब शरीर है ना तो मैंपन मेरापन खत्म होता जाएगा, जैसे किसी को इंजेक्शन लगाते हैं ना सुन करने का, और फिर थोड़ा काटते हैं थोड़ा दर्द होता है, फिर और दवाई लगा देते हैं क्या होता है, फिर सुन हो जाता है बिल्कुल, दांत भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ा कम लगे तो क्या होता है, वो पेशेंट बोलता है अरे दांत निकाल दर्द हो रहा है, फिर थोड़ा और लगा देते हैं, फिर क्या होता है, बिल्कुल सुन हो जाता है। अब क्या करो, पूरा सुन हो गया तो अभी क्या करेगा, उसका अभी फीलिंग नहीं होता है, दांत भी निकालते पता भी नहीं लगा उसको, है ना। ऐसे ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, पेट का ऑपरेशन करते हैं, अगर थोड़ा सा चक्कू लगाओ तो कैसे, थोड़ा सुन कम होगा तो क्या होगा, चक्कू लगाने देगा वो पेशेंट, लगाने देगा नहीं लगाने, और पूरा बेहोश करते हैं तो फिर क्या होगा, ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ज्वाला स्वरूप याद ये है, अशरीरी स्थिति क्या है, ज्वाला स्वरूप। और जब मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है, जब पूरा बेहोश होता है मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है ना, तो निराकारी स्थिति वो स्थिति है। इसलिए बाबा ने लास्ट दिन क्या कहा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो वो जो याद है वो क्या है, निर्विकारी। तो निर्विकार निराकारी स्थिति बनती है ना, जब हमारी निराकार भाव से कंबाइंड होते ना, तो फिर निर्विकारी, फिर हमारे विकार पापक्रम भस्म होते हैं, पांच के विकार जो भस्म होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हड्डियां हैं, ये संस्कार है, ये बसंत, राइट? यस। तो परमानेंट खुशी कब आएगी? जब हम कैसे बन जाएंगे? शिव बाबा क्या है? अशरीरी निराकारी है। शिव बाबा निराकार, सदा निराकारी है। अशरीरी किसको बोलते हैं? शंकर को अशरीरी कहते हैं। कभी शंकर को निराकारी कहते हैं क्या? शंकर सूक्ष्म शरीर वाला है और शिव बाबा निराकारी है, राइट? तो ऐसे जब अभ्यास करते 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 पवित्रता आएगी तो शांति आएगी, तब सच्चा स्नेह आएगा, फिर अतिंद्रिय सुख आनंद आएगा, फिर अशरीरी बनेंगे, राइट? अशरीरी बनेंगे तो अशरीरी बाप से कमर, तो देह के कर्म भोग क्या होंगे? और कर्म भोग हिसाब किताब जो क्या होंगे? सूर्य से कांटा बन जाएंगे। और जब निराकारी बनेंगे, निराकारी बाप से कमाइन होंगे तो निर्विकारी बनेंगे, तब हमारी सेवा शुरू। तो बाबा ने उसने कहा सेवा करो। तो बाबा का हाथ क्या महसूस होगा? माथे पर, अपने मस्तक पर महसूस होगा। कब महसूस होगा? जब हम कौन सा अभ्यास करेंगे? निराकारी स्थिति का अभ्यास। तो निर्विकारी बनते जाएंगे। तो ये अल्टीमेट स्थिति कौन सी होगी? हम कैसे बन जाए, सदा खुश कैसे रहेंगे? हम खुशी क्यों नहीं रहती है? पुराने संस्कार अभी तक हमारे साथ रहते हैं। थोड़ी देर खुश होते हैं और फिर जैसे भूले, फिर माया का गोला लगा, फिर खुशी गायब। तो जब हम निर्विकारी बनते जाएंगे और निर्विकारी बनते बनते भी संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, 7 लेवल के ऐसे ही निराकारी बनते बनते निर्विकारी बनते संपूर्ण पवित्रता बनते निर्विकारी बनते जाएंगे, तो वो स्थिति होगी हमारी सदा खुश, सदा खुश। और देवी देवता कैसे होते हैं? संपूर्ण निर्विकार, इसलिए सदा हर्षित रहते हैं, राइट? सदा खुश रहते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? सदा खुश रहने का पासवर्ड क्या है? पवित्रता। और उसकी गहराई में जाते जाओ तो क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे हम सदा शांत रहने लगेंगे, हमारा सदा सबके प्रति स्नेह होगा, अत्यंत सुख आनंद होगा, और उसके बाद अशरीर बनेंगे, फिर हम अशरीर के बाद निराकारी बनेंगे। मैंपन मेरा, अशरीर निराकारी में क्या फर्क है? मैपन मेरापन नहीं है। अशरीर में थोड़ा सा मैपन रहता है, मेरापन रहता है, क्योंकि देह से अलग हुए ना, तो अलग हुए हैं। तो थोड़ा जैसे से अशरीर का अभ्यास करते करते मैपन मेरेपन का त्याग होगा तो निराकारी बनेंगे, निराकारी में तो निर्विकारी बनेंगे, और निर्विकारी बनेंगे, जितना निर्विकारी बनेंगे तब सेवा होगी, बेहद की सेवा। जो बोलेंगे सेवा करो, मनसा सकाश दो, तो सकाश तभी दे सकता है, विकारी कभी सकाश नहीं दे सकता है। तो जितना जितना निर्विकारी बनते जाएंगे उतना हम सकाश देते जाएंगे, और जितना सकाश देंगे फिर क्या होगा? बेहद की दुआएं मिलेंगी। तो बेहद की दुआएं मिलेंगी तो क्या होगा? और खुशी बढ़ती जाएगी। तो खुशी का खजाना हमारा बढ़ता, फिर जितना बांटते जाएंगे उतना और खुशी बढ़ती जाएगी। ओम। तो याद रखेंगे पवित्रता सभी, पवित्रता कभी बनेगी? सच्ची दिल साफ दिल। दिव्य ब्राह्मण जन्म याद रहेगा तो हमारे दिल सच्ची साफ हो। चलिए अभी हम